रोड वेस्ट पे, और अगर आपको यहाँ पे बैठ के भी खाना खाना है या आपको ऑर्डर भी करना है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं एट 905-226-2294 पे।
डेंटिस्ट्री और मिसेस सागा की बात करें चलो, डेंटिस्ट्री और मिसेस सागा फैमिली कॉस्मेटिक ब्रेसेस इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू योर होम, 150 येलो एवंस बुलेवार्ड एंड 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट पे, आप दोनों ब्रैम्पटन में आप इनके पास जा सकते हैं। कोई भी दांतों का काम हो साहब आपके आपके फैमिली का, डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100 इनका फोन नंबर है। इसके साथ साथ 25 साल का एक्सपीरियंस इनके पास है, आपको समझ तो आ गई होगी किसकी बात कर रहा हूं मैं साहब। चांदनी विक्टोरिया बैंकवेट हॉल, चांदनी विक्टोरिया बैंकवेट हॉल ब्यूटीफुल हॉल, 2935 ड्रू रोड मिसिसागा में वाके, 6479653823। कोई भी फंक्शन हो 12 से 14 साल लोगों का भी आप इनके पास जा सकते हैं, 6479653823 इनका फोन नंबर है
जी। पाकिस्तान के अंदर जी प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो ऐड की गई है इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं उनके उसमें, जिसकी वजह से वो 3 साल के लिए जो है वो सेंटेंस भी अपनी पूरी कर रहे हैं अटक जेल के अंदर। उनको कन्विक्ट पहले किया गया था तोशाखाना और 9 मई के रैम्पेज केसेस में। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनुष मसूद जो है उन्होंने कहा जी कि ये ट्रीजन के अब केसेस इनके ऊपर जो हैं वो लगाए गए हैं और चालान जो हैं वो भरे गए हैं, जो वेंडलिज्म हुई थी और वायलेंस हुई थी ऑन मई 9 उस सिलसिले में। और उन्होंने कहा कि जिस इस सिलसिले में जो भी ऑब्जेक्शन रेज किए गए थे बाय प्रोसिक्यूशन उन सबको रिमूव कर दिया है इससे पहले के चालान जो है कोर्ट में डाले जाते। तो अब ट्रीजन का तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या गद्दारी की है उन्होंने मुल्क के साथ। गद्दारी तो बहुत ही एक स्ट्रांग वर्ड है जो आप यूज कर रहे हैं भाई। अच्छा बहर अन्ना कानून जो होता है ना तो ये अन्ना कानून इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जी साइरस काजी साहब, वो आपको पता ही है कि 78 UNGA की जो सेशन हो रही है उसमें वो काकड़ साहब के साथ वहां पे न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचे हुए हैं। वहां पे आज मीडिया ब्रीफिंग हो रही थी एट पाक मिशन इन यूएन, तो उसके ऊपर ये बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई है जो ट्रूडो साहब ने एलिगेशन लगाए हैं, एक्यूज किया है इंडियन गवर्नमेंट के कुछ एजेंट्स जो हैं दे आर बिहाइंड द किलिंग ऑफ सिख लीडर निजर साहब। तो वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान तो बड़े अरसे से ये बात जो है वो कर रहा था, ये कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। पाकिस्तान ने तो खुद अपने मुल्क के अंदर एक सर्विंग इंडियन नेवल ऑफिशियल गुलभूषण यादव जो था, जो कि रॉ का ऑपरेटिव था, जो कि बलोचिस्तान में काम कर रहा था इन मार्च 2016, उसको पकड़ा था। ये जो इंडियन स्पाई था इसको फिर आपको पता ही है इवेंचुअली इनको दी गई है डेथ सेंटेंस। तो वो कहते हैं जी कि ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ एस्पायनाज एंड टेरर एक्टिविटीज टू डीस्टेबलाइज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो बहुत अरसे से कह रहा है कि ये इनके बंदे यहां पर आते हैं और डीस्टेबलाइज है करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान को। इसी सिलसिले में बात करते हुए फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान में मुमताज जहरा बलोच, उन्होंने भी कहा जी कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो है इस हरदीप सिंह निजर साहब की ये रिफ्लेक्ट करती है न्यू दिल्ली का एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नेटवर्क जो कि ग्लोबल स्केल पे जो है ये लोग चला रहे हैं। वो कहते हैं जी कि ना तो ये एक कैनेडियन सिटीजन को उसी के कैनेडियन सॉइल पे मारना, ना तो ये शो करता है कि इंडिया जो है इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करता है बल्कि उसको वायलेट है, और ना यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी के ऊपर बिलीव करता है। बलोच साहिबा ने कहा कि रॉ जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है इन अबडक्शंस एंड असैसिनेशंस ऑफ इन साउथ एशिया, और 2022 दिसंबर में पाकिस्तान ने कॉम्प्रिहेंसिव डोजियर जो था वो जारी किया था जिसके के अंदर बड़े कॉन्क्रीट और इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस थे कि इंडिया जो था वो इन्वॉल्व था लाहौर अटैक ऑफ जून 2021 के अंदर, वो प्लान्ड था और वो एग्जीक्यूट किया था रॉ ने, और उसके अंदर जो है उन्होंने सारी चीजें जो है मेंशन की थी। इसके अलावा उन्होंने भी कुलभूषण यादव का जिक्र करते हुए कहा कि उसको तो हमने रंगे हाथों जो है बलूचिस्तान में पकड़ा था, लेकिन जाहिर है कि दुनिया की आंखें बंद हैं और वो इस चीज के ऊपर देख नहीं रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर बीबी जरदारी जो है वो फिर मीडिया के साथ बात कर रहे थे क्योंकि वो गए हुए थे सीनियर जर्नलिस्ट इमाद सोमरो के वालिद की जो डेथ हुई थी उनका कंडोलेंस देने के लिए। तो वहां पर उन्होंने कहा जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो मैं कहता हूं कि पार्टीज को नहीं है, तो मैं उसमें पीएमएलएन को जो है इल्जाम देता हूं क्योंकि हमारी बड़ी कंसर्न है इस सिलसिले में। और लेकिन जो मुल्क के अंदर इलेक्शंस हैं वो सिर्फ कोई भी प्रेसिडेंट या कोई और अदालतें नहीं करा सकती, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही करा सकता है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो ये करवाए। और ये बड़ा ही अनफेयर है कि सिंध को उसके जो डेवलपमेंट बजट के लिए जो पैसे होते हैं वो नहीं दिए जाते हैं और दूसरे जो जगह हैं उनको सबको प्रोविंसेस को दिए जाते हैं। तो इस तरह से भी लेवल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं बनता है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम तो पीपीपी वाले अपने सारे केसेस फेस करने को तैयार हैं और हम इसी तरह होप करते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी जो हैं आके सारे अपने केसेस फेस करेंगे। नैप के केसेस बारे में उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल बेसलेस हैं और उनका कोई भी इंपैक्ट जो है अपकमिंग इलेक्शंस के ऊपर नहीं होएगा। और उन्होंने कहा जी कि ये परसेप्शन के लोग पीपीपी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ये गलत है, हर रोज लोग पीपीपी को जोड़ रहे हैं। और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अब जो लाइव ट्रांसमिट की जाती हैं उसकी बड़ी तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने जो ये कनाडा ने एलिगेशंस लगाए हैं इंडिया के ऊपर, उन्होंने कहा जी दे आर वेरी वेरी सीरियस और ये दिस शुड बी हाईलाइटेड बाय मीडिया और इंटरिम फॉरेन ऑफिस जो है उसको। और वो उन्होंने बीबी जरदारी का कहना था कि इंडिया इज एक्सपोज नाउ बिफोर द वर्ल्ड, लेकिन क्या इसके ऊपर दुनिया एक्शन लेगी या नहीं, इसके ऊपर उन्होंने आज बड़े सवाल किए। हिंदुस्तान के अंदर आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर में, वो ही वॉज स्लैम्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर टुडे, क्योंकि उन्होंने ये बात की। आपको पता ही है कि 2018 से जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है कोई भी इलेक्शंस नहीं आए हैं और वहां पे कोई भी जो है गवर्नमेंट नहीं है, और इन्होंने उसके ऊपर कह दिया कि 80% ऑफ जम्मू और कश्मीर में जो लोग हैं वो बीजेपी के जो सेंट्रल रूल है उससे बहुत ज्यादा खुश हैं और इसलिए और कोई दूसरा सिस्टम यहां पर लाने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर है ऑपोजिशन तो वहां पे भड़क गई, ऑपोजिशन भड़क गई। और उन्होंने कहा जी के जो नईम अख्तर हैं सीनियर पीडीपी के लीडर, उन्होंने कहा जी कि अगर इनका क्लेम 100% भी मान लिया जाए तो ये आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि 80% लोग खुश हैं, क्योंकि आपने तो पब्लिक ओपिनियन को जम्मू और कश्मीर में कंप्लीटली फ्रीज किया हुआ है, तो आपने कैसे ये अंदाजा लगाया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के विच इज लेड बाय गुलाम नबी आजाद, उसके स्पोक्स पर्सन सलमान निजामी ने कहा जी कि इंडिया जो है टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन इनके रिमार्क्स जो है इंतहाई इरिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ओनली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो लोगों के बिहाफ पे बोल सकती है। आपने पिछले 6 साल से इन यहां पे इलेक्शंस ही नहीं करवाए हैं, तो आप कैसे ये बोल सकते हैं एलजी साहब कि आपको यहां पे लोग 80% खुश हैं, लोगों की तो आवाज ही नहीं आप सुन रहे हैं। यहां तक कि उमर अब्दुल्ला ने भी अपने एक्स के ऊपर कहा कि जी मीट न्यू किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर who is desperate to remain uncrowned ruler, यानी कि अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तरफ से मन घड़त जो है सर्वे सामने ला रहे हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहां पे असेंबली इलेक्शंस ना करवाए जाएं। इंडिया जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसीज है और जम्मू और कश्मीर उसका एक यतीम बच्चा है, ऑर्फन चाइल्ड है उन्होंने कहा। तो इसमें अगर आप ये लॉजिक लाने की कोशिश कर रहे हैं जो बीजेपी कहता है वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसमें हमारे ऊपर जो अप्लाई करती है चीज बीजेपी की वो वन इलेक्शन एंड नो वन नेशन एंड नो इलेक्शन जो है वो अप्लाई करती है। तो इसलिए मुझे हंसी आती है सिन्हा साहब ने जो बात की है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं फॉर्मर जम्मू कश्मीर के जो मिनिस्टर भी थे इमरान रजा अंसारी, उन्होंने भी एक्स के ऊपर कहा कि यहां पे वो आदमी बात कर रहा है यानी सिन्हा साहब के ऊपर जिन्होंने के लूज कर दिया था लोकसभा के इलेक्शंस में 2019 में बड़े बुरे तरीके से, उसके ऊपर बात करते हुए कहा जी यहां पे एक वो आदमी बात कर रहा है जो खुद 119,000 वोट से हारा था और फिर भी वो कह रहा है कि यहां पे इलेक्शंस की जरूरत नहीं है। तो काफी आज इनको बैशिंग मिली है सिन्हा साहब को। सिन्हा साहब की कर दे तुसी पाजी, कई सोचिया करो गल करन करो पहले हैं, ये ना करो दिल ना दिखाओ लोगों का। अच्छा जी, अच्छा जनाब आज एक द प्रिंट की स्टोरी है बड़ी जबरदस्त एंड दिस इज रिटन बाय प्रवीण स्वामी एंड दिस इज आवर स्पेशल रिपोर्ट टुडे। ये जो कुछ स्यापे शुरू हो गए हैं अब कनेडा और इंडिया के बीच में उसके ऊपर है, ये हम आपको राइट एट द एंड ऑफ द न्यूज सुनाएंगे और उसके बाद जो है हम आपको सारी डिटेल्स देंगे कि ये इसमें क्या खास बात है। दिल्ली का जो हाई कोर्ट है जी उसने आज कंप्लीटली रोक लगा दी है कि अनिल कपूर का ना तो नाम ना तो उनका इमेज ना तो उनका वॉइस ना तो उनके जो कैच वर्ड्स जो वो यूज करते हैं झकास एकदम झकास जो बोलते हैं वो बंद कर दिया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह को उनके काउंसिल जो है अनिल कपूर के, उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे लोग बहुत सारे अनऑथराइज्ड जो है ये चीजें उनकी यूज कर रहे हैं उनके झूठे साइन करके और ये बता के कि वो जी एक इस इवेंट के ऊपर आएंगे उनका झूठा नाम लेके, तो गलत तरीके से उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर रोक लगाई जाए। तो आज जस्टिस साहिबा ने कहा कि वैसे तो हम फ्री स्पीच को रोकते नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर इसमें किसी आदमी के इमेज को आप टार्निश कर रहे हैं तो ये क्रॉसिंग द लाइन है और इसकी हम इजाजत नहीं देंगे। तो इसलिए अनिल कपूर का कोई सेंटेंस कोई नाम कोई आवाज बिल्कुल भी इलीगली ना यूज की जाए, उन्होंने ये कहा। कंगना रनावत साहबा ने आज कहा है उनकी जो फिल्म आने वाली है इमरजेंसी, जिसके के बारे में कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल जो है वो क्लैश करेगी 2024 के जो इलेक्शन है उसमें, ताकि कांग्रेस को बैड नेम दिया जाए और जो है वो बीजेपी की फिर से हेल्प की जाए। उसके ऊपर इन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट नहीं है। आपको पता ही है कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगवाई थी मुल्क में, उसी के ऊपर यह है। वैसे मैं देख रही थी उनकी तस्वीरें कंगना रनावत की, बहुत मिलती हैं ये इंदिरा गांधी से जो उनका गेटअप किया गया खासतौर पर। वो कहती है कि ये बिल्कुल गलत है और ये भी मुझे पता नहीं है कि ये लोकसभा के जो इलेक्शन हैं 2024 में उससे पहले ये फिल्म आएगी और जो है ये इसके अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी या पर्सनालिटी को नहीं किया जाएगा, टारगेट नहीं किया जा रहा है। और मैं तो इस बात पे बिलीव करती हूं कि एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स। तो इंटरव्यूअर ने कहा जी कि आपका तो एक्शन जो है वो ये शो कर रहा है कि आप कांग्रेस के खिलाफ हो, क्योंकि एन इलेक्शन से पहले आप अपनी मूवी जो है रिलीज करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने देखी नहीं है मूवी, और ये जो है ये हाईलाइट करती है फिल्म इंदिरा गांधी जी की लाइफ स्टोरी को, चाहे वो अच्छी थी चाहे वो बुरी थी। तो इसलिए बगैर फिल्म को देखे आप प्रिज्यूम ना करें, वो तीन दफा हमारी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रही हैं, तो दिस फिल्म इज एन ओड टू हर। करण जौहर साहब आज एक इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे लोगों ने पूछा कि भाई रॉकी और रानी की जो प्रेम कहानी आप फिल्म अभी लाए थे उसके अंदर आपने बूढ़े जोड़ों का जो प्यार दिखाया है वो क्यों दिखाया है। उसके अंदर आज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। उन्होंने कहा जी कि ये सारी की सारी स्टोरी जो मैंने इसमें दिखाई है, शबाना आजमी और धर्मेंद्र साहब का प्यार, वो एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर है। मेरी अपनी फैमिली में कैसा हुआ था कि एक आदमी जिसको कि डायमेंशिया हो गया था, 80 ईयर्स के वो थे और वो बार बार एक नाम एक लेडी का लेते रहते थे जो कि वो भी फैमिली में थी और उनकी एज 84 ईयर्स थी, उनकी अपनी खुद की वाइफ की 79 ईयर्स थी एज, वो शादीशुदा थे तो, लेकिन वो उस दूसरी लेडी का नाम लेते रहते थे और बाद में पता चला कि उनके बीच में तो लव अफेयर चल रहा है एट द एज ऑफ 80 उनका अलग। तो वो कहते हैं जी उससे मैं इंस्पायर्ड हुआ। वैसे भी उन्होंने एक जो बात की उससे लोग आज बड़े हैरान हुए, क्योंकि इंडिया में भी अभी कुछ कंजर्वेटिव लोग हैं। उन्होंने कहा जी आई एम ऑब्सेस्ड विद इनफिडेलिटी। तो कहते हैं जी मुझे कभी किसी ने कहा था कि ये इनफिडेलिटी को आप इतना एंडोर्स क्यों करते हो, तो मैंने उनको कहा था मैं एंडोर्स इस चीज को कैसे कर सकता हूं जो ऑलरेडी सोल्ड है। तो यानी कि लोग इसको बड़ा फॉलो करते हैं। तो इसलिए आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होएगा जनाब यूएसए और वेस्ट इंडीज में, उसमें जो है 20 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी और ये ग्रुप्स ऑफ फोर में इनको डिवाइड किया जाएगा। 5 टीम्स ईच जो हैं ये होंगी उसके अंदर ग्रुप में, और इसमें सबसे ज्यादा लोग जो है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का वेट करेंगे। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस किस वेन्यू पे होंगे आईसीसी ने अभी तक रिवील नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि ये मैचेस लॉन्ग आइलैंड के ऊपर हो सकते हैं। तो ये इसका जो है अब लोगों को नेक्स्ट इंतजार है। आईसीसी ने जनाब आज अपना ऑफिशियल जो वर्ल्ड कप 2023 जो कि होने वाला है अब हिंदुस्तान में, उसका एंथम आज जारी किया है जिसका नाम है दिल जश्न बोले। और इसके अंदर जो है आपको नजर आएंगे रणवीर सिंह एक ट्रेन के अंदर, लेकिन लोगों को ज्यादा यह पसंद नहीं आ रहा। दिस इज कंपोज्ड बाय प्रीतम चक्रवर्ती, लेकिन वो कहते हैं जी कि इसके अंदर हमने इग्नाइट करने की कोशिश की है क्रिकेट के पैशन को और जो फैंस हैं उनको यूनाइट करने की कोशिश की है। लेकिन फैंस ने कहा जी कि ये जो 2011 के अंदर वर्ल्ड कप का जो एंथम आया था दे घूम के, उसका मुकाबला ये नहीं कर सकता। बाकियों ने कहा भाई उसके साथ इसको ना मिलाओ, दिस इज अ न्यू जनरेशन यू नो सॉन्ग, नेक्स्ट लेवल सॉन्ग। एंड जनाब लास्ट न्यूज, जिससे इसके बाद हम जाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ, इट इज अबाउट काइली एम्बेपे। एम्बेपे तो क्या बात है जी, एम्बेपे कहता है मेरा बेटा, एम्बेपे बोला करो, एम्बेपे एम्बेपे जो है उन्होंने जनाब पीएसजी को जिताया। और हुआ ये कि जनाब उन्होंने जो सेकंड हाफ के अंदर बड़ा ही जबरदस्त पेनल्टी के ऊपर जो स्कोर किया अगेंस्ट बोर्सिया डॉर्टमुंड इन चैंपियंस लीग ओपनर, और उसके बाद साथ ही उसके बाद अशरफ हकीमी ने दूसरा किया एट पार्क डिस प्रिंस है। तो वहां पे जब इनके ये दो गोल हुए तो जो है बोर्से वो हार गई 2-0 से। तो ये बड़ा इनके लिए सिग्निफिकेंट विन था, इसलिए कि ये 6 गेमें खेल चुके हैं और ये ओनली द थर्ड विन है, उससे पहले ये 3 गेम्स जो थे हारे थे। तो अब पीएसजी जो है वो लीड कर रही है अपने ग्रुप एफ के अंदर विद 3 पॉइंट्स, और एक जो पॉइंट है वो एसी मिलान का है और एक जो है न्यू कैसल यूनाइटेड का है। एंड जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय सुल्तान भाई। सुल्तान भाई आपको पता ही है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज पे होते हैं, और वहां पे आपको पता है ये बड़े खूबसूरत शैंपेन कलर के आपको अप्लायंसेज मिलते हैं। तो अगर आप अपना घर बुक कर रहे हैं या आपने ले लिया या आपको चेंज करने हैं अपने अप्लायंसेज, तो आप 801 बोवे ड्राइव वेस्ट पे जाएं या इनको आप कॉल कर सकते हैं एट 905-450-2828 पर।
ग्रिल एंड चिक की बात करना चलूं, ये कहते हैं कि बेस्ट ग्रिल चिकन इन टाउन, दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, 3525 प्लैटिनम ड्राइव इन मिसिसागा एंड 15 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन। www.grillandchick.com पे जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। 9054560500 इनका फोन नंबर है। इसके साथ साथ माई इंश्योरेंस ब्रोकर के जनाब वकार अजीम का कहना है कि अगर आपने घर की बिजनेस की अपने और इसके साथ साथ गाड़ियों की इंश्योरेंस करवानी हो तो एक दफा चांस दें माई इंश्योरेंस ब्रोकर के वकार अजीम साहब को। 416-302-2532 वकार अजीम साहब का फोन नंबर है। और सब अगर आपको या आपके घर में किसी को भी सुनने में कमी हो गई हो या सुनने सुनाई नहीं दे रहा हो तो भाई एक दफा आप पहुंच जाइए हेयर मैक्स के शिराज रहीम के पास। शिराज रहीम कहते हैं कि अगर आप साजो आवाज का हवाला देंगे तो आपका जो हेयरिंग टेस्ट है वो एब्सोल्युटली फ्री करके दिया जाएगा। तो हेयर मैक्स के शिराज का फोन नंबर है 416-792-8792। जी
जी। और हम आपको एक और बता दें जी कि सितंबर 29th को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हम इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क जो है उनका एक फंड रेजर जो है वो कर रहे हैं और उसमें एक्ट्रेस रीमा जो है वो भी 770 AM के स्टूडियोज में आएंगी। तो आप प्लीज दिल खोल के अपने एहतियात दें। हमें पता है कि टाइम्स आर डिफिकल्ट और बड़ा लोगों का फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, लेकिन ये सब सदके के लिए। आपको पता ही है कि $1 Canadian इज मजीफाई 230 रुपीज बनते हैं पाकिस्तानी, 225 या 220 रुपीज बनते हैं। तो अगर आप $1 भी देंगे तो दैट वुड इवन मेक अ डिफरेंस। $5 भी आपने दिए तो भी जरूरी नहीं है कि आप सैकड़ों में दें, $5 भी $2 भी देंगे तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प देम, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडस हॉस्पिटल फ्री इलाज करता है लोगों का। और कोई पूछता नहीं है आप हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, गोरे हैं, काले हैं, कौन है, जिसको इलाज चाहिए उसको वो देते हैं। तो विच इज आई मीन यू नो बिल्कुल एक इबादत की तरह वो अपना काम करते हैं, तो आप करें। अच्छा जनाब, ये जो स्टोरी मैं आपको बता रही थी द प्रिंट की, रिटन बाय प्रवीण स्वामी जो है, ये आज इसने फिर से सारी की सारी जो ये जो जिनको के इंडिया सिख सेपरेटिस्ट कहता है उसके ऊपर फिर से ये कटे इसने खोले हैं। और इसने कहा जी कि लेकिन हिंदुस्तान को कोई डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तलविंदर सिंह परमार की तरह के लोग जो हैं उनसे अब हिंदुस्तान इतना स्ट्रांग हो चुका है कि ना तो उससे खतरा है, ना अमृतपाल सिंह जो कि अभी पकड़ा गया था उससे कोई खतरे हैं, या कोई जो भिंडरा वाला है जिसने के आपको पता ही है कि जो चले गए थे गोल्डन टेंपल के अंदर और फिर उनको मारा था इंडियन मिलिट्री में, उस तरह के किसी बंदे से अब इंडिया को डरने की जरूरत नहीं है। अब उसकी वजह क्या है उसकी सारी आज उन्होंने जो है हिस्ट्री थोड़ी सी ट्रेल करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा जी कि कुछ अर्सा पहले ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर देखे गए थे बहुत बड़े बड़े प्लैक कार्ड जो थे वो दिखाए जा रहे थे और उसमें जो है वो कहते हैं जी तकरीबन 1978 से हम आपको हिस्ट्री आपकी ट्रेल करते हैं कि बहुत सारे लोगों के घरों में बीसी में यानी ब्रिटिश कोलंबिया में जो सुपरमार्केट सेल्स के और चीप इलेक्ट्रॉनिक जो फ्लायर जाते हैं उस फ्लायर के साथ कुछ और भी पोस्टर्स जा रहे थे और ये जो थे तलविंदर सिंह परमार के थे जिसमें कि उनको दिखाया जा रहा था कि उन्होंने दो जो है वो अपनी सोर्ड्स पकड़ी हुई हैं जिनको कि उन्होंने क्रॉस किया हुआ था और अपना उन्होंने नीला सा एक ड्रेस पहना हुआ था और उसको जो बांधा हुआ था एक सैफ्रॉन सैश से और वो कह रहे थे कि सिखों को अपने रिलीजन को फिर से जिंदा करने की जरूरत है और उनको फिर से अमृत संस्कार लेने की जरूरत है ताकि खालिस्तान की वॉर लड़ी जा सके। और वो कहते हैं जी कि ये सारी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी ये जो किलिंग हुई है हरदीप सिंह निज्जर की तो उसकी वजह से जो इंडिया पाकिस्तान इंडिया कनाडा के जो ताल्लुकात खराब हुए हैं तो हिस्ट्री जो ये डिप्लोमेटिक क्लैश की और क्राइसिस की है हम उस वक्त से 1978 ऑनवर्ड से जब ये सिखों ने बहुत ज्यादा कनाडा में जाना शुरू किया और ये सारी चीजें अपनी तेज कर दी और कनेडियन गवर्नमेंट को कॉन्स्टेंटली इंडियन गवर्नमेंट कहती रही कि आप इसके बारे में कुछ करें तो कुछ भी नहीं उन्होंने किया। और अभी रिसेंटली जो है ना सिर्फ कनेडियन गवर्नमेंट ने बड़े कंसर्न शो किए हैं बल्कि एक्सपेल किया है पवन कुमार राय साहब को जो कि रॉ के पुलिस सर्विस ऑफिसर थे ऑटवा के अंदर, तो उससे चीजें जो हैं बहुत गर्म हो गई हैं। ट्रूडो साहब ने कहा है कि हम इन चीजों को बड़ा गौर से देख रहे हैं और हमारे पास क्रेडिबल जो इंफॉर्मेशन है फॉरेन मिनिस्ट्री की जो ऑफिस से जो मेलनी जोली हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने भी कहा जी कि ये अगर ट्रू है तो ये वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी रही है, इसका मतलब है कि कनाडा की गवर्नमेंट के पास जो वो कहते हैं क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है वो नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं इफ इट इज ट्रू, इफ इट इज प्रूवन, तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सीरियस थिंग. तो इसलिए तो वो कहते हैं जी कि जिस वक्त इंडियन गवर्नमेंट आपको बता रही थी इसके बारे में, तलविंदर सिंह परमार के बारे में, तो उस वक्त क्या चल रहा था. वो कहते हैं जी तलविंदर सिंह परमार की हम थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दें कि ये कोई बहुत रिलीजियस आदमी नहीं था, ये तो कनाडा की वेल्थ के लिए वहां पे गया था अपनी बीवी सुरेंद्र कौर और 3 साल की बेटी परमार के साथ, और मई 1977 में कनाडा में आया था, और उसके बाद इसने LNK लंबर वर्क्स रिचमंड में एक जॉब ले ली थी, और उसकी बीवी सुरेंदर फिश पैकिंग प्लांट में काम करती थी, और फिर हौले हौले ये जो परमार साहब हैं ये रियल एस्टेट में चले गए, और बड़े वहां पे जाके उसने ओल्ड रिफर्बिश्ड जो प्रॉपर्टीज थी बेच बेच के बेतहाशा पैसा कमाया. वो कहते हैं जी ये बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं थे, ना तो इनकी बियर्ड थी ना तो ये टर्बन बांधते थे, लेकिन फिर 1978 में इंडिया में जो अकाली और निरंकारी जो सेक्ट्स के जो लड़ाइयां हुई उसने इनको बहुत ज्यादा धार्मिक बना दिया, इन्होंने पीना छोड़ दिया, इन्होंने अपने वेस्टर्न कपड़े पहनने छोड़ दिए, और इन्होंने बब्बर खालसा इंटरनेशनल मिलिशिया जो है वो कायम की, और जिसके के बारे में इंडियन गवर्नमेंट ने एलिगेशंस लगाए कि इन्होंने बेशुमार इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को मारा, और इनके ऊपर जो थे फिर वो एलिगेशंस आए. और वो कहते हैं जी कि फिर ये हिंदुस्तान में आए 1980 में, ये एक पूरी कैंपेन को ज्वाइन करने के लिए. नवंबर 1981 में इनका जो था एक इन्वॉल्वमेंट आया सामने एक शूट आउट में, जिसमें कि एक पुलिस वाला जो था दाहेरगू विलेज जो है उसमें लुधियाना में, उसमें उसकी जान गई, और उसके बाद एक और पुलिस ऑफिसर की जिसको कि गोली मारी गई थी उसके ऊपर जान गई. लेकिन चूंकि इनका नाम बड़ा बन चुका था कैनेडा में, तो जब इनको छोड़ा गया क्योंकि इनके ऊपर कोई एलिगेशन साबित नहीं हुए, तो इनको अपना बब्बर खालसा के लिए फंड रेजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. ये हिंदुस्तान छोड़ के 1983 पे यूरोप के टूर में चले गए, वहां पे ये अपने फंड रेजिंग कर रहे थे, लेकिन जर्मन अथॉरिटीज को इनकी चीजें अच्छी ना लगी, और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो इंडियन ऑफिशियल्स की किलिंग्स में जो है वो शामिल है. और वो कहते हैं जी कॉन्स्टेंटली इंडियन गवर्नमेंट कनेडियन गवर्नमेंट को कहती रही कि इस बंदे को डिटेन करें, इसको पकड़ें, लेकिन कनेडियन गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन उसके ऊपर नहीं लिया. बहरहाल जी जो जर्मन अथॉरिटीज थी उन्होंने फिर इसको अरेस्ट किया, लेकिन इनके लॉयर्स ने सारे पेपर लाके जो हैं वो शो कर दिए कि उस वक्त जब वो दो पुलिस अफसर हिंदुस्तान में मरे थे तो ये तो हिंदुस्तान में थे ही नहीं, ये तो नेपाल के अंदर थे, और जो है वो ये तो इनका तो कुछ लेना देना नहीं है. लेकिन फिर भी इन्होंने काफी अरसा कोई 53 वीक्स प्रिजन में काटे, और जब इन्होंने इतना टाइम प्रिजन में काट लिया फिर तो वो कहते हैं जी कि ये सिखों के हीरो बन गए, और इनको पता चला कि हिंदुस्तान के अंदर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है जिसमें के सिखों को मारा है इंडियन मिलिट्री ने. वो कहते हैं जी कि इनका गुस्सा और भी बढ़ गया, ये कनाडा वापस आए और अब तो इनके लिए फंड रेजिंग करनी और भी आसान हो गई थी, क्योंकि अब तो ये जत्थेदार साहब जो हैं ये कह रहे थे कि हमको वेज करनी है वॉर हिंदू इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट. बड़े सारे 8 बेडरूम के घर में रहते थे, 4 इनके पास जो था कार गैराज था, इनको कॉन्स्टेंटली जो है वो फॉलो कर रही थी सीसेस अपनी वो इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन बिठाई हुई थी. फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो कनेडियन जज हैं जॉन मेजर, उन्होंने कहा जी कि कनाडा की गवर्नमेंट को सब कुछ पता था इस बंदे के बारे में, फिर भी उसने कोई इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया. कहते हैं जी सीसेस के जो 2 बंदे थे वो कॉन्स्टेंटली इनको, इनके दोस्त इंद्रजीत सिंह को, रियाज को वॉच कर रहे थे जब वो अपने जो डिवाइसेस एक्सप्लोसिव उन्होंने बनाई थी जिससे कि उन्होंने ब्लो करना था एयर इंडिया फ्लाइट 182 कांशिका को, वो ट्राई कर रहे थे और ये इनको देख रहे थे, और इनको इतना डर लगा सीसीस के एजेंट्स को जैसे कि लैरी लो वो तो भाग पड़े एक ट्री के पीछे से, उनको लगा कि कहीं हम ना उड़ जाए. उनकी कॉलीग जो थी लिन जैरट वो भी भाग गई वहां से, और इनकी ये हालत थी सीसीस वालों की कि इनके पास कैमरा नहीं था कि वो सारी चीज को शूट कर लेते और जाके वो सारे सबूत जो है वो जाके सीसीस में देते कि वो इनको पकड़ा जाता इनको. बहरहाल जी वो कहते हैं जी कि उन्होंने ना तो फोटोग्राफ की ना कोई और चीजें सीसेस ने कोई प्रोवाइड की, और उसके बाद जो है कुछ लोगों के सामने आए जिन्होंने कहा जी कि इन्होंने तो हमें $200,000 तक ऑफर किए थे एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ाने के लिए. ये सारे सबूत जो थे कैनेडियन गवर्नमेंट के पास थे लेकिन फिर भी उन्होंने लिया. तो आज अगर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो है वो कहते हैं कि हिंदुस्तान ने आके कुछ किया है तो हिंदुस्तान को उसमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान का जो है अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. ठीक है जी पायन.
ये थी स्पेशल रिपोर्ट,
ये थी स्पेशल रिपोर्ट। हूँ खुश हो तुसी?
न्यूज भी हो गई,
न्यूज भी हो गई है, बिल्कुल
हो गई सारी,
बिल्कुल बिल्कुल।
अब किसी हालत में आपको रोका
नहीं
जा सकता?
नहीं नहीं, अब मैंने जो वो गोंद आज लगाई नहीं इसीलिए सीट के साथ मैंने कहा फिर मैंने चिपक जाना है, तो अब मैं उठ जाऊँ क्योंकि अब फियाज भाई आने वाले हैं।
या फियाज भाई आ रहे हैं, कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं, पूरा में वापस आएंगे। 4166201778।
थैंक यू मच भाई, आई विल सी यू।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
सोना यानी गोल्ड खरीदना या बेचना है तो एक काबिल एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स याद रखिएगा। असलम या इकराम भाई से मुलाकात कीजिएगा, हाथ के बने हुए या मशीनी जेवरात, इतनी वैरायटी है चूड़ियों और करों में, चेन्स में। आप सोने की खरीदारी के लिए एक बा एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स विजिट जरूर कीजिएगा। प्रोग्राम का रेफरेंस देंगे तो डिस्काउंट भी है और सोने की रिपेयर कोई चार्ज नहीं। रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड मॉल्टन में, रूबी ज्वेलर्स।
Pear and McKay Men's Wear, three elements that represents the brand: fit, quality and value. Quality comparable to Harry Rosen, Burberry and Hugo Boss.
New clearance and outlet launched. 100% Italian wool suits from $249.99. 100% Egyptian cotton shirts from $29.99. 100% Italian wool trouser from $49.99. Light winter jackets $79.99. Wool cashmere winter coats $299.99.
1535 Mayside Drive, Unit 19 and 20 in Mississauga, 905-670-3388. SpareandMcKay.com.
Pizzas Pros and Wings, 6 locations to serve in GTA, North York, Brampton, Etobicoke, Yaho, Mississauga. Fresh or mazedar pizzas ki variety, ya order karna ho apna manpasand custom made pizza. Iske alawa pinza roti, potato wedges, fries, salad, garlic bread ya khane ho garlic fingers. To order or take out, call 905-789-8838, 905-789-8838, www.pizzapros.ca.
वालिया ट्रैफिक लीगल सर्विसेज से जनाब आरएस वालिया।
केयरलेस ड्राइविंग,
स्पीडिंग या फिर एक्सीडेंट,
फेल टू रिमेन स्टॉप एट द सीन,
रेड लाइट्स या फिर सीट बेल्ट्स,
परमिट ड्राइव विदाउट इंश्योरेंस,
रेसिंग, स्टूडेंट ड्राइविंग या फिर कॉट व्हाइल यूजिंग फोन,
स्पीडिंग,
आरएस वालिया आपकी टिकट से निजात दिलवाएंगे और आपके पॉइंट्स भी सेव करेंगे। 9054542112,
4542112। अकाल ट्रक एंड लूम,
ताड़े ट्रक बादशाह दी क्वालिटी सर्विस, रिपेयर, ऑयल चेंज, वॉश ते मेंटेनेंस।
एक और खुशखबरी,
नॉर्थ अमेरिकन, चाइनीज ते कोरियन नवे ते इस्तेमाल शुदा टायर्स विद फुल वारंटी।
अकाल ट्रक एंड लूप, 1776 मेयरसाइड ड्राइव, 905-565-1100,
905-565-1100। सेव बिग बिग बक्स, पोस्टिम ऑटो ग्लास, विंडशील्ड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, स्मॉल चिप हो या स्क्रैच, प्रोफेशनल स्टाफ करेंगे आपकी विंडशील्ड रिपेयर मिनटों में, वो भी इंश्योरेंस क्लेम के साथ। स्पेशल चिप रिपेयर प्रमोशन ऑफ $60 ओनली, सर्विंग इन मिसिसागा, मिल्टन, ओकविल, बर्लिंगटन और हैमिल्टन में। फॉर सर्विस कॉल टुडे 905-818-8472, 905-818-8472।
जी साहब नाज़रीन, वेलकम बैक अगेन। एंड अब से कुछ ही लम्हों बाद जनाब फयाज वलाना हमारे सीनियर एनालिस्ट यहां पर होंगे हमारे साथ एंड अपना प्रोग्राम पेश करेंगे। कुछ ही लम्हों बाद हमारे पास कुछ मिनट्स बाकी हैं, तो मैंने सोचा इतनी देर में आपको एक खूबसूरत सा गीत सुनवा दूं मैं शानी अरशद की आवाज़ में। समाख फरमाइए, 4166201778 हमारा फ़ोन नंबर है।
क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना जुनून, अपनी अपनी धुन में सारे को, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम, तू आ जा मेरी अखियों में, जा मेरी अखियों में यार लिखे देखे उनमें गम ही गम गली गली नगर नगर भटक रही रही नजर मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम तू आ जा मेरी अखियों
Victoria Hall.
Shadi, Mangni, Corporate Event, Ishtama, New Year Festival, Eid Bazaar, Shopping Mela, ya phir Concert.
For all and any events, ultimate venue.
Modern decor, 1200 afraad ke baithne ki gunjayish.
No compromise on food and service.
25 saala hospitality experience.
32 rooms hotel to accommodate your guests.
Pakistani, Indian, West Indian cuisine, Chandni Victoria Hall. Call kijiye 647-965-3823. 647-965-3823.
2935 Drew Road, Mississauga, chandnivictoria.ca.
शिराज शफीक जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000 लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड
टेलीटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी ऑन लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA तो इंतजार कैसा अभी विजिट करें टेलीटाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 905-455-1666 टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स
क्या आप अपने शहर में घूमना चाहते हैं वो भी एक स्टाइलिश SUV के साथ आज ही अपना सफर शुरू करें अपनी 2023 फोर्ड एस्केप जो कि दस्तयाब है गैस हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड के साथ जुड़े रहें और ड्राइव करें एतमाद के साथ मजा लें 13 इंच से बड़ी टच स्क्रीन का राइट नाउ यू कैन गेट 1.99% APR परचेज फाइनेंसिंग फॉर अप टू 60 मंथ्स ऑन सिलेक्ट 2023 एस्केप मॉडल्स फॉर डिटेल्स विजिट Toronto area Ford dealers.
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान 11 साल से ज्यादा तजर्बा और एक भरोसामंद नाम हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज डाउन पेमेंट इश्यूज सेल्फ एम्प्लॉयड प्राइवेट फंड्स सेकेंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से नंबर टू कॉल 647-923-5659 647-923-5659 लाइसेंस नंबर 10530
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फयाज वलाना आपकी खिदमत में हाजिर है नाज़रीन कराम दिन ब दिन सियासी गर्मा गर्मी पाकिस्तान में तो अपनी जगह उरूज पर होती ही है वो ऐसा कंट्री है और मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इस हिसाब से खुशकिस्मत हैं कि वहाँ के सियासतदान और हमारे हुक्मरान कभी उन्हें फारिग नहीं बैठने देते एक से बढ़कर एक ऐसी जूसी खबर देते हैं कि सारा दिन वो कौम को जिधर लगाए रखें लोग टेलीविजन के सामने बैठे रहते हैं अखबारात को पढ़ते हैं छानते हैं उसमें से निकालते हैं डिटेल्स और रेडियो सुनते हैं लेकिन अब इन दिनों हम कनाडा में भी हमारे जर्नलिस्ट इतने बिजी हो गए हैं और उस तमाम तर क्रेडिट गोज़ टू नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जब G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां विजिट किया तो यहां हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उनके कान में कुछ बात कही जो बात उन्हें समझ नहीं आई और उन्हें नागवार गुजरी। उसके बाद उन्होंने कोल्ड शोल्डर दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को और फिर खबरें यहां जनरेट होना शुरू हुई। हम सब लोगों ने, हमें अंदाजा नहीं था कि कौन सी ऐसी बात थी, कौन सी ऐसी फाइल थी जो नरेंद्र मोदी के सामने रख दी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी के तमाम बल्ब फ्यूज हो गए थे। वो खबर अब यहां ब्रेक हुई है। आज हम अपने प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे कि किस तरह एक कैनेडियन सिटीजन को यहां कैनेडा में इंडियन रॉय एजेंसी के मुबैना जो यहां हैंडलर थे, उन्होंने किस तरह एक कैनेडियन सिटीजन की जान ले ली कैनेडा की सरजमीन पे। अब कैनेडियन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रा की शरंगेजियों से कैनेडा में भी लोग महफूज नहीं है और यही वजह है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दिया है अपने सिटीजन के लिए कि अगर आप इंडिया में मौजूद हैं या आप आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया विजिट करने का प्लान बना रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हमें नहीं लगता कि आपकी वहां महफूज होंगे। आपको केयरफुल रहना होगा पूरे इंडिया में, उन्होंने कोई एक एरिया नहीं बताया, पूरा इंडिया ही उन्होंने कहा कि गैर महफूज है। इसी तरह इसके अलावा कि ये सारा वाकया क्या है उस पर बात करेंगे और आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे खालिस्तान काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर बख्शीश सिंह संधु। डॉक्टर बख्शीश सिंह संधु से बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे, हमारे स्टूडियो में हमारी अपनी इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान में इन्होंने काम किया, यूए में काम किया और अब यहां कनाडा में ई आवाज़ टेलीविजन पे आप रोजाना इनकी खबरें सुनते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये खबरें सुना के निकली ही थी तो मैंने इन्हें स्टूडियो में रोक लिया। इनसे भी पूछेंगे, इनके पास अपने हमारे वाहिद मिनिस्टर थे और वाहिद एमपीपी हैं हमारे डग फोर्ड गवर्नमेंट में, ओंटारियो की गवर्नमेंट में, कलीद रशीद साहब, उनके हवाले से एक गर्मा गर्म खबर है। मैं खबर इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि उस पर ज्यादा काम अपनी हमारी शाजिया मलिक ने किया है, इनसे खबर पूछेंगे और फिर आपस में हम तबसरे के अलावा इस पर भी बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब को क्या परेशानी लाहक हो गई है। वो तो बड़े तुम तराक से, बड़े अपने उससे शानो शौकत से पाकिस्तान जाना चाहते थे, फिर अचानक क्या हो गया कि उन्होंने 24 घंटे पहले, एक महीना उनके पास रह के वापस पाकिस्तान लौटने वाले उनके भाई मियां शहबाज शरीफ साहब को वापस लंदन बुला लिया और अब मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों वापस लंदन जा रहे हैं और शायद वापस जाके वो मियां शहबाज शरीफ साहब को कहेंगे कि हजूर आप ये कौन सा पुराना बयानियां फिर लेके आ गए हैं, ये बयानियां तो आपके हाथ से कोई और लेके चला गया और उस बयानियों को इमरान खान के बयानियों के तौर पर पूरी कौम तस्लीम कर चुकी है, अब आपका ये बयानियां भी नहीं चलेगा और जो हम आपकी डील करा रहे थे एस्टेब्लिशमेंट से वो भी शायद नहीं चलेगी। उस पर बात करेंगे कि मियां साहब के साथ क्या हुआ और फिर हम डॉक्टर बख्शीश संधु साहब से बात करेंगे। जी शाजिया मलिक, कैसी हैं आप?
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ फियाज भाई। मैं आपके दोनों ही जो आपने क्वेश्चंस रेज किए हैं मैं उनका जवाब दे देती हूँ। एक तो जो ट्रूडो साहब के साथ हुआ और जो दूसरा आपने बात की है कलीद रशीद की, बिल्कुल शॉर्टली मैं बात करना चाहती हूँ। जो ये है हमारा खालिस्तान का जो सिलसिला है, ये आपको पता है काफी अरसे से भड़का हुआ था। जब पहली बार भी ट्रूडो साहब ने इंडिया का विजिट किया था उस वक्त भी बहुत कोल्ड शोल्डर दिखाया था मोदी जी ने उनको और उन्होंने कहा था कि आपके जो कंट्री के अंदर खालिस्तान ये जो बैठे हुए हैं वो इंडिया उनको बड़ी अच्छी नजर से नहीं देखता है। आज भी जो हिंदुस्तान के जो न्यूज़पेपर्स थे उसमें बेशुमार एडिटोरियल्स जो आए हुए हैं वो कहते हैं जी, उन्होंने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि आज जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया के ऊपर एतराज कैसे कर रहा है, जबकि हम बड़े अरसे से कनेडियन गवर्नमेंट को कहते हैं कि आपके मुल्क में ना सिर्फ खालिस्तानी हैं बल्कि बहुत सारे दूसरे लोग, जैसे कि तलविंदर सिंह परमार, जैसे कि इंद्रजीत रियात वगैरह, वो जो हैं वो वांटेड लोग थे, उनको आपको कॉन्स्टेंटली हम देते रहे हैं आपको इंफॉर्मेशन कि इन लोगों के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं, आपने उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। बल्कि आप जब हिंदुस्तान में आते हैं तो आप कहते हैं जी, हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बड़ी जो है वो ऊंची जगह पे रखते हैं और हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम अगर कोई पीसफुल असेंबली कर रहा है तो उसको हम नहीं रोकेंगे। तो इसलिए अभी भी इंडियन गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से कन्विंस नहीं है, क्योंकि ट्रूडो साहब ने और जो इन्होंने कहा है कि जी हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन तो है बट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, और जो हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं मेलनी जोली, उन्होंने भी कहा है कि इफ प्रूवन दीज आर वेरी सीरियस एलिगेशन, मींस वो डाउट कर रहे हैं कि कनाडा के पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इस सिलसिले की है कि कोई रॉ के एजेंट्स आए हैं और उन्होंने نظم آ رہا ہے کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ لیکن اب کینیڈین گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ بڑا احتیاط سے چل رہی ہیں, جیسے کہ کل بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو پرووک انڈیا, رائٹ, تو ہم لوگ کرتے ہیں ایسکلیٹ, ہم چیزوں کو نہیں کرنا چاہتے. تو ہندوستان کے اندر تو اس وقت جو ہے وہ یہ ماحول ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنی کریڈیبل انفارمیشن ہے. اور جو کلید رشید صاحب کے بارے میں آپ نے کہا,
کلید رشید سے پہلے میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اپنا انڈین ہائی کمیشن تھا
جی,
اس میں انتہائی سینئر پوسٹ پہ تھے
رائے صاحب, یس,
اپنا پون کمار رائے,
یس,
ان کو پرسنل نان گراٹا قرار دے کے ویسے ہی تو نہیں
کیا گیا,
ہماری گورنمنٹ نے پوری تحقیقات کی ہیں,
پولیس سروسز جو را کے پولیس سروسز کے جو آفیسر تھے وہ تھے وہ یہاں پہ,
18 جون کو مرڈر ہوا ان کا, 18 جون سے لے کر جون کا مہینہ, جولائی اگست, 3 مہینے کی آر سی ایم پی کی انویسٹیگیشن تھی, اس کے نتیجے میں پھر رائے کو یہاں سے کینیڈا چھوڑنے کے لیے کہا گیا. تو اور پھر اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا, ایسے نہیں انہوں نے کسی کو جرنلسٹ کے پوچھنے پہ کسی عام سی کے میڈیا ٹاک میں نہیں کیا, اسمبلی کے اندر ایک ریسپانسبلٹی ہوتی ہے,
نہ صرف یہ کہ بلکہ انہوں نے اپنے پارٹنرز کے ساتھ بھی بات کی,
پہلے انہوں نے کنزرویٹو کے ہیڈ پولیور کو اور جو این ڈی پی کے جگمیت سنگھ کو اعتماد میں لیا ان سے بات کی, اور اس کے بعد پھر امریکہ کو, آسٹریلیا کو, یو کے کو, فرانس کو, نیوزی لینڈ کو, جو 5 آئیز ہیں سب کو انہوں نے اعتماد میں لیا, اور اب وہ جو ہے اس پہ بہت سیریس انویسٹیگیشنز بھی ہوں گی, اور اس پہ اب آگے دیکھیں, اب انڈیا جو ہے انڈیا کے پاس اپنا چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں. فار ایگزامپل کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا پہلے جانتی ہے کہ وہ کشمیر میں انڈیا کیا کر رہا ہے, پھر یہ انڈیا آج نہیں کر رہا. آپ دیکھیں ہمارے پاس کلبھوشن یادیو تھا, کلبھوشن یادیو کون تھا, راہ کا بندہ تھا, مبارک حسین
انڈین نیوی کا آفیسر تھا, سرونگ آفیسر تھا
اور راہ کے لیے کام کرتا تھا, اور وہ مبارک حسین کے نام سے اس نے ایک فیک آئی ڈی بنوایا ہوا تھا, اور وہ ایران میں چاہ بہار میں بیٹھ کے اور وہاں سے وہ بلوچستان اور کراچی تک پھرتا رہا, اور یہاں کے انہوں نے بم دھماکے کرائے, اور اب وہ سب کچھ تسلیم کر چکا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے تسلیم نہیں کیا, اس نے ساری باتیں تسلیم کی ہوئی ہیں. تو یہ ایک لیونگ ایگزامپلز ہیں. ہم جب کہتے تھے کہ دیکھیں یہ پاکستان میں دہشت گردی کراتا ہے اور پاکستان میں یہ اندر آتے ہیں راہ والے اور یہ کرتے ہیں, تو دنیا شاید اس وقت اتنی نہیں سنتی تھی. اب دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ اگر کینیڈا جیسے ایک امن پسند, ایک پرامن ملک میں آ کے اگر وہ اس طرح کر سکتے ہیں تو وہ کہیں بھی کر سکتے ہیں. تو انڈیا جوں جوں وہ پاؤں پھیلا رہا ہے, ایز اے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ورلڈ پاور ہیں, اکانومی کے لحاظ سے وہ پاؤں پھیلا رہا ہے, تو یہ ایک نیا خطرہ دنیا میں ابھر رہا ہے. چائنا کو پہلے اس کے بارے میں تشویش ہے, امریکہ ابھی اس کا گڈی گڈی ہو رہا ہے, دوستی کر رہا ہے, لیکن اسے اندازہ نہیں ہے امریکہ کو کہ اگر ہم جتنی اسے شاباشی دیں گے, جتنی تھپکی دیں گے اس انڈیا کو, یہ آگے بڑھ کے دنیا کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا.
جی بالکل, کیونکہ آج پاکستان فورن آفس نے بھی کہا ہے کہ اب تو ایکسپوز ہو گیا ہے کہ انڈیا جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نیٹورک جو ہے وہ سارا چلا رہا ہے. اچھا جی, کلید رشید صاحب کے آپ کا جو ہے وہ قصہ وہ میں یہ سنا دوں, وہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ جو ایک ہوٹل کے 3 امپلائیز ہیں وہ سامنے آئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ تو 3 لوگ یہاں پہ تھے, اور ہاں جی لاس اینجلس میں اور لیس ویگس میں, سوری, یا لیس ویگس میں تھے, اور انہوں نے تو بڑی گڈ نیوز دی تھی جو ہے اس کو, جو ریئل اس کا,
ہاں جی, شاکر رحمت اللہ,
شاکر رحمت اللہ کو بڑی انہوں نے یہ گڈ نیوز دی تھی, اور انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے. اچھا, اس میں جو اب کلید رشید صاحب کا آفس ہے وہ کہتا ہے جی کہ انٹیگریٹی کمیشن کو ہم نے جو کلید رشید کی انیشیل آئٹنری تھی جو کہ دسمبر 2019 کی تھی وہ ہم نے ان کو دے دی, حالانکہ وہ اس ڈیٹ پہ گئے نہیں تھے, کچھ مسئلہ ہو گیا تھا, وہ ڈیفر ہو گیا تھا اور پھر وہ نیکسٹ ایئر گئے تھے, تو وہ جو نئی آئٹنری تھی وہ ہم نے نہیں دی تھی. اچھا, جب انہوں نے انٹیگریٹی کمیشنر نے کہا کہ آپ پھر وہ والی آئٹنری دیں, تو انہوں نے کافی ڈیلے کر دیا, اور ڈیلے کا آج انہوں نے جو ہے وہ جواب یہ دیا ہے کہ ہم وہ جو ہوٹل تھا جہاں پہ کہ جا کے پھر وہ لیٹر ڈیٹ پہ رہے تھے, ادھر سے ریسیٹ نہیں آ رہی تھی, جس کی کہ پیمنٹ ساری جو کلید رشید صاحب نے اپنے کریڈٹ کارڈ سے کی تھی, اور جو ان کا سٹے کا واؤچر تھا وہ ہم کو نہیں مل رہا تھا. تو ہوٹل نے جیسے ہی ہم کو وہ چیزیں بھیجی ہیں, تو الانگ ود دا نیو آئٹنری اور وہ ساری پیمنٹس جو انہوں نے اپنے کریڈٹ کارڈ سے کی تھی پھر نیکسٹ ایئر میں فیبری میں, اور جو کچھ وہاں پہ ان کے جو خرچے ہوئے تھے اور جو سٹے تھا وہ اب ہم نے دیا ہے. تو اس سلسلے میں, اس کی روشنی میں اب آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. کلید رشید صاحب کا تو لینا دینا ہی نہیں ہے, لیکن چونکہ اب اس کے اوپر ہیٹ بہت زیادہ جنریٹ ہو گئی ہے, تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کلید رشید صاحب نے پھر آج ریزائن کر دیا ہے, کیونکہ ویسے بھی یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ اگر وہ رہیں گے وہاں پہ اس کے اندر تو پھر وہ
پروب
پرفارم بھی نہیں کریں گے, اور اس طرح سے پروب بھی نہیں چلے گی. آپ کو پتا ہی ہے کہ ہاؤسنگ منسٹر مسٹر سٹیو کلارک صاحب اور ان کے جو چیف آف سٹاف ہیں جو تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی ریزائن پھر اسی لیے کر دیا تھا.
مسعودی
بھی ہیں. ہاں جی ہاں جی.
اچھا میرے خیال میں کلید رشید صاحب نے اچھا کیا ہے, انہوں نے ریزائن کر دیا ہے
جی,
اور انہوں نے کہا جب تک یہ سارا کچھ سیٹل نہیں ہو جاتا, جب تک سب کچھ پروو نہیں ہو جاتا, میں کلیئر ہو کے واپس آئی کین جوائن ڈگ فورڈ کیبنٹ.
مسعودی صاحب جو ہیں وہ ایکس ایڈ ہیں ان کے جو ہیں وہ ڈگ فورڈ صاحب کے, اور یہ جو ہیں رحمت اللہ صاحب جو ہیں شاکر صاحب جو ہیں وہ تو بڑا اپنے آپ کو سیلف سٹائلڈ فرینڈ جو بنے ہوئے ہیں ڈگ فورڈ صاحب کے,
فلیٹو ڈیولپمنٹس کے ڈیولپر ہیں, بہت بڑے ڈیولپر ہیں.
اور لیکن اب وہ زمین کا جو حصہ ہے نا وہ اب گرین بیلٹ کا جو اس پہ ڈیولپمنٹ کر رہی تھی وہ اب ریموو ہو گیا.
چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ابھی ہم ڈاکٹر بخشیش صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, ان کے ساتھ جو ہے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارا کیا ایشو کیا ہے, کینیڈا کو کیوں اس حد تک جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہیلو ہیلو.
ہاں جی.
السلام علیکم جناب.
ہاں جی ہاں جی. میں
ڈاکٹر بخشیش صاحب. ست سری اکال جناب, کیسے مزاج؟
ہاں جی ست سری اکال بھائی صاحب جی. السلام علیکم جی. ٹھیک ٹھاک تھی؟
بالکل ٹھیک جناب. آپ آن ایئر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ 770 AM ریڈیو اور ای آواز ٹیلی ویژن پہ. ناظرین میں آپ کو تعارف کراتا چلوں کہ ڈاکٹر بخشیش سنگھ سندھو صاحب یہ پریزیڈنٹ ہیں خالستان کونسل کے, اور اس کے علاوہ یہ سکھ فار جسٹس کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں. یہ دو تنظیمیں ہیں, سکھ فار جسٹس اور خالستان کونسل, یہ بہت بڑی تنظیمیں ہیں. یہی مین تنظیمیں ہیں جو ریفرنڈم کرا رہی ہیں پوری دنیا میں, اور ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ حق رائے دہی کی بات کرتی ہیں, یہ ووٹ کی بات کرتی ہیں. انہوں نے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں اٹھائی ہوئی, انہوں نے کوئی بندوق نہیں اٹھائی ہوئی, یہ کوئی ایسی کسی ایکٹیویٹی میں نہیں ہیں کہ انہیں آپ یہ کہیں کہ آپ کسی قسم کی ٹیررسٹک یا کسی کی ایگریشن میں آپ انوالو ہیں. یہ تو ووٹ کی بات کرتے ہیں, رائے کی بات کرتے ہیں, اظہار رائے کی بات کرتے ہیں, اور کینیڈا میں اظہار رائے کی آزادی ہے, یہاں فریڈم آف سپیچ ہے, ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق اظہار رائے کر سکتا ہے. یہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ خالستان نام کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے اس دنیا پہ یا نہیں ہونا چاہیے, اور کیونکہ اکثریت ان خالستانی اور ہمارے سکھ بھائیوں اور بہنوں کی تعداد کیونکہ اکثریت انڈیا میں رہتی ہے اور ان کے آج سال سے نہیں وہ ہزارہ سال سے وہاں رہتے ہیں, تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پنجاب کا وہ علاقہ جہاں خالستان میں جہاں سکھ بھائی ہمارے اور سکھ بہنیں اکثریت میں ہیں, یہ ایک ان کا اپنا آزاد وطن ہونا چاہیے. یہ آزاد وطن کی بات کر رہے ہیں, آزاد وطن کے حوالے سے یہ لوگوں کی رائے معلوم کر رہے ہیں. انہوں نے یہ سفر ریفرنڈم کرانے والا اٹلی سے سٹارٹ کیا, اسپین گئے, یو کے گئے, اس کے بعد کینیڈا آئے, اور اب یہ اور بھی ممالک میں کروا رہے ہیں, اور بالآخر فائنلی انہوں نے نیکسٹ ایئر انڈیا میں جا کے یہی ریفرنڈم کرانا ہے. جی ڈاکٹر بخشیش صاحب, کیا یہی بات ہے؟
بالکل ٹھیک ہے جی. اسی پنجاب نو ہندوستان تو آزاد کرنے واسطے ساری دنیا جو ریفرنڈم کرا رہے ہیں.
بالکل ٹھیک.
کیونکہ پنجاب کی دھرتی ہندوستان کی سرکار کا قبضہ وا
جی,
ہندوستان کی سرکار پنجاب نو کالونائز کیتا ہویا
جی.
اوتھے پنجاب دے وچ ہندو سرکار دی سرکار دی مرضی تو بغیر پتا نہیں ہل سکدا
جی.
پاوے پنجاب اسمبلی الیکٹڈ اسمبلی ہے, اوتھے گورنر بھی لایا ہویا وا
جی.
ایک گورنر دا بھی اوتھے جڑا پربھاو ہے, انڈین گورنمنٹ دا پربھاو ہے, ہم عام آدمی پارٹی وہ بھی دلی تو آئی ہے. اسی پنجاب دے لوکاں نو آزادی لکھ کے دینی ہے
جی.
سارے پنجاب دے لوکاں نو
جی.
سکس پر جسٹس یا کاؤنسل آف خالستان, سکھ قوم جڑی ہے وہ اپنی آزادی لے رہی ہے, پر آزادی پنجابیاں واسطے تے پنجاب دی دھرتی واسطے لے رہی ہے. سو اٹ بی اے کنٹری آف پنجابیز فار دا پنجابیز بائی دا پنجابیز. انڈیا ول بی ناٹ ان اینی پاور ان پنجاب, بی سیپریٹ کنٹری.
اچھا یہ جڑے ہردیپ سنگھ نجر سن, بڑا افسوس ہویا انہاں نال جو واقعہ ہویا اور جو اس تو بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی. یہ ہردیپ سنگھ نجر جڑے سن انہاں دا تھوڑا جہا تعارف کرا دیو. یہ تہاڈی ٹائیگر سن, ٹائیگر تہاڈی فورس جڑی ہے خالستان ٹائیگر فورس, اس دے چیف سن, اور اس تو علاوہ اس گردوارا گرو نانک صاحب دے یہ پریزیڈنٹ بھی رہے.
ہاں جی, اے چیز پائی نجر بڑے چیتوں خالستان دی پراپتی واسطے اپنی مہم کردے آ رہے نے.
ٹھیک ہے.
ہن اے سن گرو نانک سکھ گردوارا انہوں دے پریزیڈنٹ سن.
ٹھیک
ہے. انہاں دا بہت پربھاؤ سی, بہت زیادہ دنیا جڑی آ اور فنڈم دے نال لگ گئی. انڈیا نو اے چنگا نہیں لگا, انڈیا نے بڑے پہلو ہی انہوں نے کوشش کی تھی کہ انہوں نے ایکسپورٹ کیتا جاوے جا ایکسٹرا ڈائٹ کیتا جاوے. ایکسٹرا ڈائٹ کرنے سے وہ فیل ہو گئے. پھر انہوں نے کوشش کی تھی کہ اجیت بھائی نج نو اتنے سیسنڈ کیتا جاوے. اس طرح کینیڈین اتارٹی جی سی انہوں نے ہردیپ بھائی نج نو انفارمیشن دیتی کہ تم اپنا بچا کر کے رکھ, تیرے حملہ ہو سکتا وا.
آر سی ایم پی
نجر صاحب کہتے جی میں نہیں, ਮੈਂ ਨੀ ਡਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰਾਂ ਫਿਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੌਂਟੀ ਰੱਖੀ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਲੰਬਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਡੈਡ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਵਰੰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ।
ਬਿਲਕੁਲ,
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾ, ਯੂਰਪ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ।
ਬਿਲਕੁਲ,
ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁੱਲੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨੀ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨਸ਼ਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਵਾ, ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇੱਕ ਥੰਮ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਬਲੂਨ ਸੀ ਉਹ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ,
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ?
ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜ ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 770,000 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ?
ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇੰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
770,000 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ।
ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੈਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2% ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ 2% ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਆਲਮੋਸਟ ਪੈਰਲਲ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ।
ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ
ਜੀ,
775,000 ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੇ ਬੀ 1.5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 4% ਤੋਂ 5% ਤੋਂ ਜੇ ਲਗਭਗ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 7.1% ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 1.54% ਆ।
ਅੱਛਾ,
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ 1.5% ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ।
ਠੀਕ,
ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ?
ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਫੰਡਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਠੀਕ,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ they have their own method of action, they are doing their own, they basically right now Sikh for Justice and Council of Khalistan, they are in the driver seat.
ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ?
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ,
ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਾਬਨ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।
ਓਕੇ,
ٹھیک ہے تے اگر لوگ تواڈے نال مزید جڑنا چاہن تے او تواڈی کوئی ویب سائٹ ہے کہ ایسا کیڑا ذریعہ جے دے نال تواڈے جڑا ساڈے پروگرام سن رہے ہیں سکھ بھائی او تواڈے نال جڑنا چاہندے ہیں ہاؤ دے کین ریچ یو؟
ہاں جی جی وہ سارے پروگرام سننا چاہتے ہیں تو سارے دو پروگرام جی ٹی وی سے آتے ہیں ایک ہے جی یوس میڈیا انٹرنیشنل تو وہ جا پروگرام روز شام نو آلموسٹ ایوری ڈے 9 o'clock تو شروع ہوتا وا دو گھنٹے رہتا وا وہ جی پولیٹکس پنجاب جی کہ یو کے چلتا وا وہ جڑ سکتے ہیں جی سکھ فار جسٹس کی ویب سائٹ آ وہ نام جی sikhforjustice.org
ٹھیک ہے تے تواڈے ریفرنڈم کتنے کنٹریز ہو چکے ہیں اور مزید تسی ریفرنڈم تواڈا اگلا مرحلہ تواڈا کیڑا
ہن ریفرنڈم جڑا جی 6 کنٹری چ ہو رہا بلکہ 5 ہو چکا 6ویں چ ہو رہا جتنا پہلا یو کے دے وچ ہویا پھر اے ہویا جی سوئٹزرلینڈ پھر آسٹریلیا اٹلی تے آسٹریلیا اے سال 3 وری جڑا وا آسٹریلیا تو آیا وا ہوں جا پچھلے سال جا سی وہ کینیڈا بھی شروع ہوا اتنے ٹورنٹو چ ووٹاں پی چکی نے اس سال 10 ستمبر جا کے لنگ گیا وا خری چ ووٹاں پہ نے جہد 135,000 سکھ جی آئے سی لگ بھگ 50,000 جڑے سی وہ واپس چل گئے اتنے دوبارہ ریفنڈم ہو رہا 29 اکتوبر نو سری کی دھرتی سے
135,000 اسی سنیا کہ سری دے اس دن ہوئی ہے اس دن 135,000 لوگ آئے
اتنے دیکھو جی جس طرح کہ تھی رات نو جی تھی کہو کہ میں اج سارے گننے ہاں کہ تسی گن نہیں سکدے اسی طرح اوتھے اینے سکھ آئے سن کہ تسی انہاں نوں گن نہیں سکدے تے جدوں کہ 12 بجے کے کئیاں سڑکاں تک پچھوں تک لائناں جا رہی سی تے لوکاں نوں سمجھ لگی یار پتہ نہیں میری واری آنی کہ نہیں آنی میں اگلی واری ووٹاں پاواں گا یا پاواں گی جو ساڈے ویر تے بھنا جڑے سی وہ چلے گئے پر انہاں واسطے اسی دوبارہ اوتھے ریفنڈم دا انتظام جڑا وا وہ ڈیٹ جڑی آ اسی اناؤنس کرتی آ جگہ جڑی آ وہ وقت سے جڑی اناؤنس کیتی جائے گی
تسی سارے پروگرام سننے والے یہ بھی دس دیو کہ فائنل مرحلے تسی انڈیا جانا انڈیا دا تہاڈا کی پلان ہے کدوں تسی انڈیا جانا چاہندے ہو اور کدوں تسی انڈیا جا کے ریفرنڈم کرانا
اسی انڈیا بھی ریفرنڈم کراواں گے جی پر اسی ڈیٹ نہیں دس دے کیونکہ یہ بڑا سینسٹو میٹر ہے کہ اس کے وقت تم ڈیٹ دیتی جائے گی جس طرح میں تمہیں دسا کہ جس طرح کہ سری دی دھرتی اتنے ریفرنڈم جڑا سی ایک سکول دے وچ ہونا سی
ٹھیک ہے
تے او سکول دے وچ جدوں کہ ڈیٹ اناؤنس کیتی گئی تے ہندوستانی جڑے نے جنہاں نوں کہ اے چنگا نہیں لگدا ریفنڈم ہوئے انہاں نے بڑیاں ای میلاں کیتیاں کالاں کیتیاں گورنمنٹ نوں کال کیتی پولیٹیشن نوں کال کیتی تے انہاں نے کینسل کرن دی کوشش کیتی کوشش کرن واسطے انہاں دا آرگیومنٹ اے سی کہ جڑے اتے پوسٹر لگے ہوئے نے اودے اتے ایک AK-47 آ اس کرکے بچے جڑے سکول دے وہ ڈر سکتے ہیں تو انہاں واسطے ٹھیک نہیں ہے پر انہوں نے وہ غلط مطلب کڈیا مس کریکٹرائز کیتا مس ریپرزینٹ کیتا جیڑی وہ AK-47 گن ہے وہ ہندوستان دی ہے
بالکل
جیڑی خاص طور ریفنڈم دی جیڑی انسٹرومنٹ ہے وہ ایک پین ہے جڑا کہ گن نو ختم کر رہا وا
بالکل ایسے
اسی یہ میسج بھیجدے ہاں کہ وی آر ڈوئنگ دا ریفنڈم بٹ وی وانٹ ٹو کل دا انڈین AK-47 جڑے کہ سکھاں نو مار دیا
بالکل
ہن تک 150,000 سکھاں ماریا جا چکا وا ساری کوئی نہیں پوچھتا
جی
ساری جی ہوں ساری دنیا سارے نال ہے اسی کینیڈا دی دھرتی دا کینیڈا دے لوکاں دا کینیڈا دے پولیٹیشن اسپیشلی پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو تے جڑے بھی ہور لوگ جس طرح کہ NDP دے جن چارج جسمیت سنگھ دوجے جڑا
کنزرویٹو
مسٹر پالی ویر اپوزیشن دے ممبر نے انہوں نے بھی کیا کہ ساڈا حق بنتا وا فری سپیچ اینڈ رائٹ ٹو کمپین فار خالستان ایشو
اچھا انڈین ڈپلومیٹ پون کمار رائے نو اتھوں کڈیا گیا تسی تواڈے کول ایسی اطلاعات سن کے انڈین جڑے ڈپلومیٹ ہیں وہ بھی انڈر کور راہ لئی کام کر رہے ہیں اتھے اور تواڈی جتنی تحریک ہے پرامن تحریک ہے وہ خلاف کام کر رہے ہیں اور تواڈے لوگوں کی جان تک کو لے سکتے ہیں
دیکھو جی یہ جڑا انڈیا دا سسٹم ہے انہوں نے 1970 تو ہی باہرلے دیشوں دے وچ انہوں نے بہت زیادہ انٹیلیجنس ایجنٹ جڑے بھیجے ہوئے ہیں انہوں نے پتا سی کہ جدوں کہ انہوں نے جدو پنجابی صوبہ نہیں سی بنایا گیا تو سکھاں نے بڑے پیسفل مظاہرے کیتے تے جولائی 4th of July 1955 دربار صاحب تے انڈین جڑی سی پیراملٹری فورس تے پولیس نے ہمارا کہا کہ 200 تو زیادہ سکھاں نو منجی صاحب گردوارے تے انہوں نو ساڑ کے ختم کر دتا مار دتا
یہ
ساڑ دے اس کا کریں ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨੀ ਰਹਿੰਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ।
ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਸੀ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਬਾ ਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ